ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಬಾಬಾ ಕಿ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಬಚ್ಚೆ, ಸದಾ ಹೀ ಅಪ್ನಿ ಉನ್ನತಿ ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬನಾತೆ ರಹತೆ ಹೈನ್. ಆಜ್ ಭಿ ಬಾಬಾ ನೆ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನಾ ಲೇನೆ ವಾಲೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ವರದಾನ್ ದಿಯಾ ಕಿ ಭಲೆ ಆತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಬಚ್ಚೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನಾ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಔರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಆ ಸಕತೆ ಹೈನ್. ಇಸಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಜ್ ಕಾ ಯೇ ವಿಷಯ ಚುನಾ ಗಯಾ ಕಿ ಅಗರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೋ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಜನ್ ಮೇ ಆನಾ ಹೈ, ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾನಾ ಹೈ, ಅಪ್ನಿ ಉನ್ನತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮೇ ಕ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಖನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ಹಮಾರಿ ಉನ್ನತಿ ಹೋ, ತೋ ಮೇ ಇನ್ ದೋ ಬಾತೋ ಪರ್ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಆಜ್ ವಿಶೇಷ ಯಾದ್ ಕಾ ಚಾರ್ಟ್ ಔರ್ ಧಾರಣಾಓ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಚ್ಛಾ ರಿಕಾರ್ಡ್, ಅಚ್ಛಾ ಚಾರ್ಟ್ ಔರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕಿಸ್ಕೋ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಉಸ್ ವಿಷಯ ಪರ್ ಕುಛ್ ಅಪ್ನೆ ಚಿಂತನ್ ಕಿ ಬಾತೆ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ರಖೂಂಗಾ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜಬ್ ಭಿ ಬಾಬಾ ಕಿ ಮುರಳಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಸುನ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಕಿ ಮುರಳಿ ಮೇ ಬಹುತ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕರಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಬಚ್ಚೆ ಅಗರ್ ಅಪ್ನಿ ಉನ್ನತಿ ಕರ್ನಿ ಹೈ ತೋ ಚಾರ್ಟ್ ರಖೋ, ಔರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಉಮಂಗ್ ಆತಾ ಹೈ ಲಿಖನಾ ಶುರೂ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಕುಛ್ ಸಮಯ ಲಿಖತೆ ಹೈ ಔರ್ ಫಿರ್ ಛೋಡ್ ದೇತೆ ಹೈ. ಬಾಬಾ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಸಬ್ ಸಾಕಾರ ಮೇ ಬಾಬಾ ಥೆ, ಬಚ್ಚೆ ಅಪ್ನಾ ಚಾರ್ಟ್ ಭೇಜತೆ ಥೆ ತೋ ಕೈ ಬಾರ್ ಬಾಬಾ ಉಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೋ ದೇಖ್ ಕರ್ಕೆ ಕಹತಾ ಥಾ ಇಸ್ಕೋ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮೇ ಡಾಲ್ ದೋ, ಯೇ ಬಚ್ಚೆ ನೆ ಸಚ್ಚಾ ಚಾರ್ಟ್ ನಹೀ ಲಿಖಾ ಹೈ. ಕಿಸಿ ಬಚ್ಚೆ ಕೋ ಬಹುತ್ ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ಉಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೋ ದೇಖತೆ ಔರ್ ಪಢತೆ ಥೆ ಲೇಕಿನ್ ಕಿಸಿ ಕೋ ದೇಖನೆ ಭಿ ಪಸಂದ ನಹೀ ಕರ್ತೆ ಥೆ. ಆಖಿರ್ ಅಚ್ಛಾ ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಜೋ ಬಾಬಾ ಕೋ ಪಸಂದ ಆ ಜಾಯೆ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ನಿಶಾನಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಂಗಿ. ಅಗರ್ ಹಮಾರಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ, ಆಜ್ ಮೈ ಆಪ್ಕೋ ಲಿಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರೇರಿತ ನಹೀ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂಂ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಸಬ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ವೋ ಸಂಭವ ನಹೀ ಹೋತಾ, ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ದೃಢತಾ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಅಪ್ನಿ ಉನ್ನತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪ್ನಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯ ಕರ್ ಸಕತೆ ಹೈ ಔರ್ ಅಗರ್ ಅಧಿಕ ಬಾತೋ ಕಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿ ಜಾತಿ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಮನ್ ಉಲಟ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಅಚ್ಛೆ ಚಾರ್ಟ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೈ ಕೇವಲ ದೋ ಬಾತೆ ಆಪ್ಕೋ ಸುನಾತಾ ಹೂಂ. ಏಕ್, ಬಾಬಾ ನೆ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಕಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಖೀಚ ಕರ್ಕೆ ದಿ ಹೈ ಔರ್ ಮೈ ಸಮಜ್ತಾ ಹೂಂ ಬಾಬಾ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಜೋ ಮುರಳಿಯೋ ಕಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಉನ್ಹೇ ಬಾಬಾ ಕಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೈ. ಶ್ರೀಮತ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಈಶ್ವರೀಯ ನಿಯಮ ಔರ್ ಮರ್ಯಾದಾಯೆ ಆತಿ ಹೈ. ಅಗರ್ ಹಮ್ ಈಶ್ವರೀಯ ನಿಯಮ ಔರ್ ಮರ್ಯಾದಾಓ ಕಾ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಯಥಾರ್ಥ ಪಾಲನ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ, ಮಾನಾ ಹಮಾರಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ, ಬಾಬಾ ಭಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೇಗಾ ಕಿ ಯೇ ಬಚ್ಚಾ ಅಮೃತ ವೇಲೆ ಸೆ ರಾತ್ರಿ ತಕ್ ಜೋ ಭಿ ಇಸೆ ನಿಯಮ ಔರ್ ಮರ್ಯಾದಾಯೆ ಬತಾಯಿ ಗಯಿ ಹೈ ವೋ ಪಾಲನ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಸೆ ಬಾಬಾ ಕೋ ಉಸ್ ಬಚ್ಚೆ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಸ್ನೇಹ ಜಾಗೃತ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಬಚ್ಚಾ ಜಿಸ್ಕಾ ಚಾರ್ಟ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ. ತೋ ಆಪ್ ಸಭಿ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಚೆಕ್ ಕರ್ನಾ ಕ್ಯಾ ಸವೇರೆ ಸೆ ರಾತ್ ತಕ್ ಮೈ ಈಶ್ವರೀಯ ನಿಯಮ ಔರ್ ಮರ್ಯಾದಾಓ ಕೋ दृढ़ता के साथ पालन करता हूं, कोई भी मर्यादाएं संकल्प मात्र भी उल्लंघन तो नहीं होती, चेकिंग कर सकते हैं। और उल्लंघन होती है तो उसको चेक करें और चेंज करें, सिर्फ चेकिंग न करें, क्योंकि कई बार अपनी कमजोरियों को बार बार देखने से भी आत्मा बड़ा निराश हो जाती है, उदास हो जाती है, मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। इसलिए चेक करो और चेंज करो, किसी को सुनाने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप को अपने अंदर की बातों का पता होता है, मेरे कौन से संस्कार ईश्वरीय मर्यादाओं में चलने में रुकावट डाल रहे हैं, चेक करो चेंज करो। दूसरी बात है जो बाबा चार्ट के लिए कहता है वो है अव्यभिचारी याद, एक बाबा दूसरा न कोई। अच्छा चार्ट अगर कोई कहता है मेरा चार्ट बहुत अच्छा है तो उसके दिल में केवल एक बाबा ही बसता है, कोई भी देहधारी आत्मा उसे प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए अच्छा चार्ट जिनका है वो अपने योग की स्टेज को, याद की स्टेज को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं, एक बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करते हैं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से रूह रिहान करूं, हर समय बाबा बाबा बाबा, उनके सिवाय और कोई भी आत्मा की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। तो अच्छे चार्ट के लिए दो बातें ही हैं, एक अपने याद की परसेंटेज को चेक करो और बढ़ाते चलो, दिल में सदा कोई भी कर्म हो, कोई भी बात हो, हमेशा बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, बाबा की प्रेरणा है, बाबा की श्रीमत है, एक बाबा की सिवाय और कोई भी बुद्धि में न टिके। तो ये दो बातें अगर हैं तो उसकी निशानियां भी दिखाई देंगी, और उसकी निशानियां हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होती हैं। जिनका चार्ट अच्छा है उनकी मैं चार निशानियां बताता हूं। एक तो उनके जीवन में बहुत दिव्यता आती जाएगी, दृष्टि वृत्ति स्मृति बहुत पवित्र और शुद्ध बनती जाएगी। तो चार्ट अच्छा है तो दिव्यता और उसके साथ साथ अलौकिकता दिखाई देगी। ये अलौकिक हैं, लौकिक नहीं हैं, अलौकिक माना ही अल्लाह लोग हैं, केवल एक बाबा से इनका दिल का प्यार है, सबके प्यारे होते भी सबसे न्यारे हैं, कर्म में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, लौकिक संबंध और कार्य निभाएंगे, लेकिन लौकिकता नहीं दिखाई देगी। मैं समझता हूं लौकिकता को ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो लौकिकता माना साधारणता, साधारणता जैसे लोग हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, चलते हैं, कर्म करते हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं, किसी को दुख दे दिया, किसी को अपसेट कर दिया, कभी खुद मूड खराब कर लिया, कभी दूसरे की खराब कर दिया, ये सब लौकिकता है। जो अलौकिकता को अपना लेते हैं वो बहुत न्यारे और प्यारे, बहुत सम्मानजनक व्यवहार में आते और करते हैं। तो आप सभी इस बात को चेक करना कि दिव्यता और अलौकिकता हमारे जीवन में कहां तक आई है, और इसका आधार है रूहानियत। आत्मिक स्थिति का जिसने अच्छा अभ्यास किया है, आत्मा को देखने का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास, उसके चेहरे पर भी रूहानियत आती जाती है। दो शब्द बाबा के आपने सुने होंगे, एक है रूहानियत के आधार से रुहाब, रुहाब, रुहाब समझते हैं, अलौकिक नशा, नशा है लेकिन वो नहीं, लौकिक वाला नहीं है, देह अभिमान वाला नशा नहीं है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बड़ी पोस्ट पर हूँ, मैं ऊंचे घराने का हूँ, ऊंचे कुल का हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब जिस्मानियत है, रुहाब नहीं है, वो रोब दिखाई देता है। जहाँ रुहाब है वो अलौकिक नशा है कि मैं किसका हूँ, स्वयं भगवान मुझा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, उसके निर्देशन में, उसके मार्गदर्शन में मैं आत्मा चल रही हूँ, नशा है, साधारणता नहीं है। तो वो रूहानियत रुहाब को ले आती है और रोब को समाप्त कर देती है। रोब में अहंकार दिखाई देता है, कैसे चलता है, कितना इसको रोब है, अहंकार दिखाई देता है। तो चेक करना दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत और वाणी के अंदर मधुरता कहां तक आई है, इस बात को बहुत अंडरलाइन करने की जरूरत है। अगर हमारे व्यवहारिक जीवन में मधुरता नहीं है, मधुर बोल नहीं निकलते, कटु वचन निकलते हैं, कितना भी योग करो आप, चार्ट भेज दो, मैं 8 घंटा योग करता हूँ, मैं 12 घंटा करता हूँ, बाबा के सामने वो चार्ट आएगा तो बाबा उसको डस्टबिन में डाल देगा, क्योंकि चाल चलन में अगर सुधार नहीं दिखाई देता, व्यवहार में अगर वो मिठास नहीं है, वो सुख देने और सुख देने का नेचर नहीं बना है, तो योग किस लिए कर रहे हो, दिखावा है क्या? अगर हम सब योगी हैं, योग कर रहे हैं, तो योग का अर्थ ही है हमारे संस्कारों में परिवर्तन आना चाहिए, दिव्यता आती जाए, अलौकिकता आती जाए, रूहानियत आती जाए, और सबसे बड़ी बात है हमारी वाणी में मधुरता आती जाए। मैंने इस जनवरी मास में आप सबके पास एक चार्ट भेजा था, शायद ध्यान गया हो, सिर्फ 4 बातें लिखी थी। मधुबन में बहुत से भाइयों ने उस चार्ट को फॉलो किया, उसके आधार से हमने यहाँ प्राइज भी दी थी। वो 4 बातें इतनी सुंदर थी, योग से ही कनेक्टेड थी, चार्ट से कनेक्टेड थी, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। एक, हम सबको चेक करना है मन की शुद्धता कितनी है, क्योंकि मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक दूसरे के व्रत, वीर विरोध, कितनी भावनाएं कट्टू भरी हुई हैं। अगर मन हमारा शुद्ध नहीं है, माना योग हमारा यथार्थ नहीं है। जब अग्नि है, हम कहते हैं योग एक अग्नि है, और उस अग्नि के अंदर अगर कोई स्थूल आग के अंदर भी कोई चीज अगर डाल दी जाए और तेज आग हो, तो क्या होता है, उसका रंग रूप बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और अगर याद की अग्नि है, योग अग्नि है, लगन की अग्नि है, तो क्या मेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा, वो संस्कार दिव्य नहीं बनेंगे? तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सब अपने इस चार्ट को चेक करें कि हमारी मन की शुद्धता कितनी बढ़ती जा रही है। निर्मल मन, किसी के प्रति भी कोई घृणा, द्वेष, वैर, विरोध, ऐसी भावनाएं न जागृत हों, बहुत निर्मल मन है, कंट्रोल में है, जब चाहे जो चाहे वही सोचें, और जितना समय चाहे उतना समय उस स्थिति में स्थित हो जाएं। अभ्यास करके देखना कि हम अगर चाहते हैं कि हम 15 मिनट एक रस स्थिति में मन को टिका लें, स्थिर हो जाएं, हो सकते हैं कि 1 मिनट होंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। तो मन शुद्ध होता जाएगा तो निर्मल मन कहीं भी टिक सकता है, और उससे बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, बुद्धि की एकाग्रता, क्यों, बुद्धि बहुत चंचल है, बहुत भटकने वाली है, जिधर भी कोई अच्छी चीज देखेगी उधर फट से आकर्षित हो जाएगी। बुद्धि का काम ही भटकना है, लेकिन हम सबको बाबा ने कहा है, बच्चे 1 सेकंड में मन और बुद्धि को शुद्ध और एकाग्र कर लो, समय न लगे, यथार्थ चार्ट रखने वाली आत्माएं अपने मन और बुद्धि की शासक बन जाती हैं, कंट्रोल में आ जाता है। एक शुद्धता बढ़ती जाती है और दूसरी एकाग्रता बढ़ती जाती है और तीसरी थी मुख की मधुरता। इतना सुंदर चार्ट रहता है अगर सबका ध्यान रहे कि मुझे एक भी बोल मुख से कट्टू नहीं बोलना है, किसी को कोई ऐसी बाड़ी ऐसे बोल जिससे वो आत्मा दुखी हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो जाए, वैसे बोल मुख से मुझे नहीं निकालने हैं। तो जब ये तीन बातें हमारे ध्यान पर आती हैं तो चौथी बात हमारा याद की का चार्ट जो है वो अपने आप बहुत अच्छे से अच्छा हो जाता, बाबा हमारे दिल में जैसे रहता है। कई बार कहता है जब कि बाबा को अपने दिल में बिठा लो, हमारी दादी जी गुलजार दादी बड़ी एक रमणीक बात हमको कहती थी कि बाबा को दिल में बिठाना माना क्या, क्या दिल इतना साफ और स्वच्छ है जो एकदम परम पवित्र आत्मा को मैं अपने दिल के आसन पर बुलाऊं और बैठा लूं। आप सोच सकते हो दादी का दिल कितना स्वच्छ और साफ होगा, किसी के लिए भी कोई संकल्प विकल्प नहीं, ऐसी निर्संकल्प आत्मा मेरी गुलजार दादी जिसने कम से कम 48 साल लगातार बाप और दादा की डबल शक्तियों को अपने अंदर दिल में बिठाया और इतने बच्चों को भासना और पालना दी। अभी हम सबको बाबा यही कह के गए लास्ट दिनों में, यही मुरलियां चली बाद में कि बच्चे तुम बाबा को अपने दिल में बिठा लो। तो दादी कहती थी देखना वो दिल में बिठाने के लिए साफ स्थान है, अगर कोई की याद दूसरे की बैठी है, कुछ दूसरा कुछ भरा हुआ है, इधर उधर की बातें हैं, तो बाबा वहां आएगा क्या, बैठ सकता है क्या, नहीं आएगा। इसलिए ध्यान देना अगर हम निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी, राजयोगी का टाइटल बाबा से ले रहे हैं तो हमें इन तीनों बातों पर बहुत ध्यान देना है। मन की एकाग्रता बढ़ती जाए, मन की स्वच्छता शुद्धता बढ़ती जाए, बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाए और बोल की मधुरता, अगर इस पर ध्यान है तो याद भी स्वतः और निरंतर हो सकती है। तो हम सबको पहले अपना अच्छा चार्ट चेक करना चाहिए, लिखो भले नहीं लेकिन बीच बीच में चेक करो कि ये दो बातें ट्रैक से बाहर तो नहीं उतर जाती है। जैसे कहते हैं बाबा एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं फिर ज्यादा उसके पीछे ड्राइवर को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक चलती रहती है। हम सभी भी अगर यही दो पटरियों पर, एक मर्यादा की पटरी है, नियम मर्यादाएं हैं एक तरफ और दूसरी तरफ एक अव्यभिचारी याद है, अपने बुद्धि को अपनी इस बुद्धि की ट्रेन को यहां खड़ा कर दें तो सीधे रास्ते पर हम चलते चलते अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे और जो हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी अपने अच्छे चार्ट पर ध्यान देना, बाबा खुश हो हमारे चार्ट को देख करके, इस बच्चे का चार्ट बहुत अच्छा है। अब दूसरा है श्रेष्ठ रिकॉर्ड, क्योंकि आप हम सब जानते हैं स्कूल के अंदर जिन्होंने पढ़ाई की है, अच्छे स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ने वाले जिनका 90, 95, 98 तक परसेंटेज आती, उनको भी एडमिशन तब मिलती है जब उनकी चलन और उनका व्यवहार अच्छा होता है, उसका रिकॉर्ड अच्छा होता है। अगर रिकॉर्ड ठीक नहीं है, पढ़ाई की मार्क्स सिर्फ अच्छी हैं, तो भी जल्दी एडमिशन नहीं मिलता। ध्यान देना हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर हम सेवाएं भी खूब कर रहे हैं, योग भी अच्छा लगा रहे हैं, मुरलियां सुनते हैं, सुनाते हैं, क्लास कराते हैं, लेकिन क्या मेरा रिकॉर्ड सबसे अच्छा है? रिकॉर्ड पर ध्यान अगर किसी का है तो सब मार्क्स उसको मिल सकती हैं। परिवार के अंदर इस रिकॉर्ड की बहुत जरूरत है और इसका अगर जरा भी कोई ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं आज कुछ मिसाल के साथ आपको बताऊंगा 6-7 बातें कि किन किन बातों का रिकॉर्ड हमारे बाबा को चाहिए। सबसे बड़ी बात, पहली बात मैं सुना देता हूं, वो है हमारे चरित्र का रिकॉर्ड। ब्राह्मण कुल में हम आप सब जानते हैं, इस दुनिया के अंदर हम कहते हैं, अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि गरीबी कोई पैसे की, धन की, अन्न की नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गरीबी चरित्र की गरीबी है। चरित्र गिर गया व्यक्ति का, पैसा आ जाए, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, गांव गांव में जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं इनको पैसा ही नहीं है, बेचारे गरीब हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था करवा दो, आप यहाँ ये सहयोग दिला दो, कितना भी आप सहयोग दे दो स्थूल में। अगर दूसरे साल आप फिर सर्वे करके देखेंगे तो वहां कोई भी पैसे की कोई भी चीज वहां पर उपलब्ध नहीं होगी, अगर उनकी आदतों को परिवर्तन नहीं किया गया। बाबा ने हम सबके चरित्र को ऊंचा उठाया, पहले चिंतन चेंज किया और चिंतन के साथ साथ हमारा चरित्र ऊंचा बनाया। चरित्र के अंदर विशेष दृष्टि वृत्ति की शुद्धता पवित्रता आती है, अंदर की शीतलता आती है, जिसमें क्रोध की उत्तेजना समाप्त हो जाए और जो हमारी आसक्तियां हैं वो समाप्त हो जाए, चरित्रवान व्यक्ति वो कहलाता जो अंदर बाहर से पवित्र शुद्ध स्वच्छ है दृष्टि वृत्ति में, और जिसका एक एक अंग शीतल है, कभी भी क्रोधित नहीं होता, और जो इच्छा मात्रम अविद्या है, जिसकी इच्छाएं आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वो चरित्रवान कहलाता है। तो बाबा ने हम सबके रिकॉर्ड में ये बात सुनाई है कि अच्छा रिकॉर्ड उनका कहेंगे जिनका चरित्र बहुत अच्छा है। इस पर ध्यान देंगे हम सब, इसको अंडरलाइन करेंगे कि हम सब बाबा के चरित्रवान बच्चे अपने चरित्र और श्रेष्ठ चरित्र के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दूसरा रिकॉर्ड हम सब जानते हैं, हम जिस परिवार में पल रहे हैं लौकिक और अलौकिक, इसमें एक दूसरे को रिगार्ड देने का रिकॉर्ड चाहिए। आजकल सबको रिगार्ड की जरूरत है, छोटा हो या बड़ा हो, और ये चीज मांगने से नहीं मिलती है। मुझे दिया जाए, मैं इतना सेवाएं करता हूं, मैं इतने कार्य कर रहा हूं, मुझे सबका रिगार्ड मिले, सम्मान से लोग देखें, पूछें, बात करें, तो बाबा कहते हैं ये मांगने से नहीं मिलता, आप दोगे तो मिल जाएगा। तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड कितना अच्छा है उसको हम सब चेक करें और देते चले, मांगे नहीं, अपने आप सब देंगे। तीसरी बात आती है, वो है अंदर और बाहर की आनेस्टी, ईमानदारी। हमें अपने आप से ईमानदार बनना है। दूसरों के सामने हम दिखाते हैं बड़े सच्चे हैं, बड़े ईमानदार हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, कभी हेरा फेरी नहीं करते, कभी कोई को धोखा नहीं देते, ईमानदार हैं। लेकिन संगम युग पर बाबा ईमानदार जब कहता है, तीन शब्द यूज करते हैं बाबा, सुनते हैं आप सब, आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार। फरमानवरदार भी आज्ञाकारी में आता है। जो बाबा के ईमानदार बच्चे आनेस्ट जो हैं, वो अपने आप से आनेस्ट, अंदर और बाहर एक हैं, बहुत समान अंदर की स्थिति है, कथनी और करनी में समानता है। तो श्रेष्ठ रिकॉर्ड उसको कहा जाता जो आनेस्ट है, सच्चा है, अंदर से एक और बाहर से दूसरा रूप नहीं है। एक मुरली चली है बाबा की, बहुत प्यारे शब्द हैं बाबा के, मीठे शब्द हैं। इस ब्राह्मण परिवार में सबसे खौफनाक कौन है? ब्राह्मण परिवार में सबसे खौफनाक, खतरनाक व्यक्ति कौन है? जिसका अंदर एक और बाहर दूसरा है। ध्यान देना, कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं, उसके व्यवहार से बाह्य रूप से समझते हैं बड़ा योगी है, बड़ा ईमानदार है, और चलते चलते उसके चक्र में आ गए तो धोखा खाते हैं, दुख उठाते हैं, कई तो अपनी सारी संपत्ति उसके पीछे लुटा देते हैं। इसलिए ध्यान देना, बहुत समझ करके, परख करके चलने की आवश्यकता है। खुद ईमानदार बनो, अपने आप से ईमानदार रहो, और जो हैं आत्माएं संबंध संपर्क में, उनको भी अच्छी तरह से पहचान करके, परख करके, फिर उनसे संबंध निभाओ। नहीं तो धोखा होगा, फिर कहेंगे हमें बताया नहीं गया, हमें बहनों ने गाइड नहीं किया, ये तो बड़ा सेवाधारी था, बहुत अच्छी मदद करता था, हमको क्या पता ये इतना पैसा लेके भाग जाएगा कहीं। लोग ऐसे फंस जाते हैं, चक्रों में आ जाते हैं। इसलिए देखना, आनेस्टी बहुत बड़ा गुण है, और बहुत गिने चुने बच्चे भी आनेस्ट होते हैं, सब नहीं होते। अगर आनेस्ट है तो बाबा की दिल पर राज्य कर सकते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे इस शिवरात्रि पर आए हैं, महाशिवरात्रि पर कुछ तो जल चढ़ाएंगे ना, तो ये जो कमजोरियों का जल है, कोई भी ऐसी अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, कथनी करने में अंतर है, तो बाबा के घर में उसको स्वाहा करके समाप्त करके ये बेल पत्र चढ़ा करके जाना। चौथी बात है, अच्छा रिकॉर्ड उनको कहा जाता है जिनकी मूड एक रस रहे, मूडी नहीं बने। बाबा का एक शब्द सुनाता हूं, बड़ा प्यारा शब्द है, बच्चे घड़ी घड़ी के घड़ियाल नहीं बनो। घड़ी घड़ी के घड़ियाल समझते क्या होता है? घड़ियाली आंसू होते हैं, वैसे तो मगरमच्छ को घड़ियाल कहते हैं, लेकिन बाबा अपनी भाषा में कहते हैं ये जो गिरगिट होता है ना, मछली जैसा एक गिरगिट, उसको घड़ियाल बोलते हैं सिंधी में। अगर उसको आप पत्थर ऐसे मारेंगे ना तो भागेगा नहीं, वो लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, रूप बदलेगा, हरा हो जाएगा। तो बाबा कहता है मेरे बच्चों की मूड जो है वो बदलनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो। इस पर सभी अंडरलाइन करना, क्या मेरी मूड एक रस रहती है? चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई गाली भी देके चला गया हो, लेकिन मूड परिवर्तन ना हो, इस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत। तब कहेंगे इसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम सब इस बात को ध्यान दें, अंडरलाइन करें कि अच्छा रिकॉर्ड किसको कहा जाता है, जिसकी एक रस बिल्कुल अच्छा स्थिति है, मूड कभी बदलती नहीं है। एक बार हमारे भाई जी ने, जगदीश भाई ने किताब लिखी, पहले एक लेख लिखा ज्ञानामृत में, और उसमें लिखा 56 प्रकार के मूड अलग अलग, और हर एक के दिखाए कि सारे दिन में कितने मूड बदलते हैं सब। कोई अच्छी बात हो गई, खुशी का मूड देखो तो भी नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशनुमा है, और कोई ने कुछ कह दिया एक मिनट में, कोई बात अच्छी नहीं हुई, मन पसंद नहीं हुई, और एकदम बाबा कई बार कहता है मुर्दे जैसे मूड बना लेते। तो हम सब इस बात को देखें, अंडरलाइन करें, हमारे रिकॉर्ड के अंदर ये लोग कहें कि सचमुच इसकी मूड बड़ी एक रस है, अचल है, खुशनुमा मूड है, कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई देती, कुछ भी हो जाए। तो हम सब इस बात को चेक करें, माताएं चेक करना, अगर बच्चे कुछ नटखट करते हैं तो मूड तो नहीं बदलती है, एक रस मूड रहे। और पांचवी बात मैं सुनाता हूं, बहुत एक्यूरेट, जो कुछ करो उसमें अंतर दिखाई न दे। कई लोग काम उतारने के लिए काम करते हैं, कोई सेवा दी गई उतार दिया, बस पट 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 करके पूरा कर दिया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। अगर एक्यूरेट नहीं है, यथार्थ नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है, और हमने केवल काम उतारने के लिए कर दिया, तो भी हमारा रिकॉर्ड खराब हो गया। कर तो दिया, हाँ जी तो किया, अच्छी बात है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं किया। सेवाएं की जाए लेकिन बहुत एक्यूरेट हो, ये हम सब ने। मैं आज आपको दो दादाओं का मिसाल बताता हूँ। हमारे यज्ञ के अंदर जैसे दादियों का पार्ट विशेष रहा है, ऐसे दादाओं का पार्ट भी बहुत विशेष रहा है। हमने तीन दादाओं की पालना ली है मधुबन में, चौथा दादा भी था लेकिन थोड़ा वो अलग था, लेकिन तीन दादाओं की पालना जो ली है, तीनों दादाओं की विशेषताएं थी। एक दादा थे विश्व रतन दादा, शायद नाम तो सुना होगा, देखा तो नहीं है। एक्यूरेट किसको कहा जाता है, उनसे कदम कदम पर हमने सीखा, सब चीज बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, काम उतारने वाली नहीं। उनका साइन लास्ट दिन का, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है, शरीर भी बड़े वंडरफुल रीति से छोड़ा, 2 घंटे पहले इस डायमंड हॉल का चक्कर लगा रहे थे, इधर एक भाई था उनके सेवा में, साथ में था, बुजुर्ग हो गए थे, 80 साल के ऊपर उम्र थी, और कमरे में गए, भोजन सामने, खाना शुरू किया, भोग लगाते लगाते बाबा के पास चले गए। लेकिन शुरू से जो सेवाएं मिली, और सब कर्मणा सेवाएं करने में नंबर वन, ऐसे नहीं कि मैं भाषण करूं, मैं क्लास कराऊं, कभी कभी क्लास मिलता होगा शायद साल में 1-2 बार, लेकिन सब प्रकार की कर्मणा सेवाएं, और बहुत परफेक्ट एक्यूरेट। उनका लास्ट दिन का साइन जो है, क्योंकि चेक और ड्राफ्ट जितने भी मधुबन में आते थे विश्व रतन साइन होता था, और दादा का साइन जरा भी कहीं ऐसे भी नहीं हिल गया हो लास्ट दिन भी, बहुत एक्यूरेट करते थे। खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, शुरू से लेकर के जब हम सब आए मधुबन में, छोटे छोटे बच्चे आए, तो दादा एक एक चीज की ऐसी ट्रेनिंग देता था कि जो करो बहुत एक्यूरेट करो, नहीं करना तो छुट्टी कर दो, नहीं करना। सवेरे पहले पहले हम लोगों की रोटी बनाने में ड्यूटी लगी, रोटी बनाने की, और मधुबन में रोटी बनाने का, अभी तो सब मशीनें आ गई, साधन आ गए, साइंस के साधन आ गए, पहले हम लोग लकड़ी के ऊपर कोयले पर रोटियां पकाते थे, तो इतना बड़ा तवा होता था जिसमें हम 10-12 रोटी एक साथ तवे पर डाल दें, और डालते तवे पर एक तरफ पकाया थोड़ा सा, फिर सिगरी पर, कोयले की सिगरी पर दे दिया। लेकिन अगर जल्दी किया, फास्ट किया, तो कोई कच्ची रहेगी, कोई पक्की होगी, कोई जल जाएगी, कुछ होगा, और दादा उस पर नजर रखता था, देखें कैसे बनाते हैं लोग, तो सिखाता था कि अगर रोटी कच्ची है, कहता था इधर आओ देखो ये कच्ची है ना, अगर कोई खाएगा, मान लो यज्ञ की चीज फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करनी है, और उसने खा लिया, उसके पेट में दर्द पड़ेगा, उसको दवाई लेनी पड़ेगी, वो खर्चा होगा, उसकी बद्दुआ निकलेगी, वो किसको लगेगी जिसने बनाया है। और अगर मान लो जला दिया और जली हुई देख करके कोई ने नहीं खाया, उसने फेंक दिया, यज्ञ का नुकसान किया, उसका बोझ किस पर आएगा जिसने बनाया है। इतना ध्यान एक एक चीज का, करो तो एक्यूरेट करो, नहीं करना तो छोड़ दो, बहुत एक्यूरेसी सिखाई, करके दिखाया, एक एक कर्म में जो किया, पहरा देते थे रात, नाइट का पहरा देते थे, मैं समझता हूं लास्ट तक भी, शायद लास्ट दिनों में 5-10 साल उनको कमरा मिला होगा, कमरा ही नहीं था, ऑफिस में जाते थे, रात को सोने की ड्यूटी थी, ऑफिस में सोते थे, और बाथरूम कम से कम मैं समझता हूं यहां से कॉन्फ्रेंस हॉल इतनी दूर था। इतनी उम्र में भी दादा ने पांडव भवन का जो बाबा का ऑफिस है वो रात को वहां सोना, और बाहर गेट की तरफ बाथरूम में वहां जाना, न कोई व्यवस्था ली, न कोई डिमांड किया, बहुत एक्यूरेट काम किया, और इतना नेट संकल्प आत्मा, कोई भी ऐसा नहीं मेरी ये इच्छा है मैं ये करूं यहां जाऊं, दादी जी ने कहा है मुझे करना है बस, इतना आज्ञाकारी थे। दूसरे राजा थे दादा चंद्रहास, इकोनॉमी के अवतार थे, कोई भी एक भी यज्ञ की चीज व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, जरा भी कोई अगर डिमांड है तो उसको पहले देने के पहले सिखाना कि देखो ये वेस्ट ना हो, ये बहुत कीमती है, किसकी मेहनत की कमाई है, ध्यान दो। तो मैं कहूंगा कि जो इस ब्राह्मण परिवार के अंदर एक्यूरेट हैं, बहुत एक्यूरेसी से चलते हैं, एक नामी और एकानामी का अवतार बन करके रहते हैं। एकानामी माना ये नहीं समझना कंजूस है, कई बार इकोनॉमी को हम कंजूसी की तरफ ले जाते हैं, है सब कुछ लेकिन कुछ खर्चा नहीं कर रहा है, बाबा उसको इकोनॉमी नहीं कहता है। इकोनॉमी माना कोई भी चीज व्यर्थ खर्च ना हो, फजूल में न जाए, जो करना है बड़े दिल से करो लेकिन जो व्यर्थ जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, उसको बचाओ। बाबा का एक स्लोगन रहा है कम खर्च बाला नसीन, खर्चे कम हो और काम अच्छे से अच्छा हो, ऐसा करके दिखाओ, ऐसी क्वालिटी हमारे दादाओं में रही, और उन्होंने यज्ञ को इतना संभाल करके आगे बढ़ाया। रिकॉर्ड अच्छा उसको कहेंगे, एक नामी है, एक व्रता है, एक बाबा की याद में है, और संकल्प, बोल, संपत्ति, हर चीज की इकोनॉमी है, कहीं भी उसको व्यर्थ नहीं गंवाया, एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, इस पर किसका ध्यान है। अगर ये रिकॉर्ड किसी ने बना लिया, उसकी बहुत अच्छी प्रगति, बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा इस समय धोखा देने वाला जो माया का रूप है वो है व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प के रूप में। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प की शुरुआत जब होती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मेहनत का काम है। हम पहले ही चेक करें ये व्यर्थ की उत्पत्ति क्यों हो रही है और इससे हमारी कितनी शक्तियां, समय जा रहा है, संकल्प जा रहे हैं, हमारी आंतरिक एनर्जी नष्ट हो रही है, कितना व्यर्थ जा रहा है, उसको हम बचाएं, इकोनॉमी करो। ये रिकॉर्ड अगर बना लिया, एक नामी और इकोनॉमी का अवतार बन करके रहते हैं मेरी दादी जी, फ्राक दिल बहुत थी, इतना सब किया है, जो भी यज्ञ के अंदर विस्तार आप देख रहे हो, बड़े फ्राक दिली से किया है, कोई परवाह नहीं कि ये कहां से आएगा, बाबा कराएगा, लेकिन एक भी पैसा अगर कहीं व्यर्थ जाता था तो बुलाती थी, देखो तुम्हारे द्वारा ये यज्ञ का ये पैसा व्यर्थ जा रहा है, इसको बचाओ। बाबा ने भी सबको सिखाया व्यक्त रूप में भी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, गरीबों का पैसा है, इससे सतयुग बन रहा है, स्वर्ग बन रहा है, इसलिए ऐसे नहीं है जो आया उड़ा दिया। तो हम सब इसका रिकॉर्ड बनाएं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, हम तो बाबा को कह चुके हैं ना, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, जब बाबा का है और उसने आप हमको दिया है, भले समर्पित हैं या घर में रहते हैं, गृहस्थी में हैं, लेकिन क्या हम ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए संपूर्ण ट्रस्टी बन करके रहते हैं? बाबा की अमानत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, दिखावे में नहीं जानी चाहिए, इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूं, बाबा कहता है उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, देखा देखी कर रहा है, देखा देखी नहीं करो, जितना कर सकते उतना बहुत प्यार से करो, दिल से करो, लेकिन एक दूसरे से भेंट नहीं करो। और एक बात और अंडरलाइन बाबा ने कराई हुई है, सभी ध्यान देना, कर्ज मर्ज है, कर्ज लेने न पड़े वो अच्छा है, अगर कहीं कर्जदार बन गए तो कभी नींद नहीं आएगी, योग नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान देना कि हम सबको अपने पांव पर उतना ही खर्चा करना है, उतना ही धन खर्च करना है जितना कमा सकते हैं, जितना है, फालतू व्यर्थ खर्च न हो। अगर इस बात का रिकॉर्ड अच्छा बना लिया तो हमारी बहुत अच्छी प्रगति होती जाएगी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और बाबा ये कहता है बच्चे, न भगवान के आगे हाथ फैलाओ, न किसी इंसान के आगे हाथ फैलाओ, इतना आप संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, इतना आपके अंदर भरपूरता हो, इकोनॉमी से चलो, कम खर्चे से काम निकालो, जो आपको कभी भी किसी के आगे ऐसे न करना पड़े। हम सबको बाबा ने इतना दिया है, अखुट है, अखंड है, अगर इसको विधिवत यथार्थ यूज करना हम सीख जाएं, बस कहीं भी व्यर्थ न जाने दें। और एक बात है, हम सबकी भावनाएं सबके प्रति समान बन जाएं, उसकी बहुत जरूरी, उसका रिकॉर्ड चाहिए। एक पैसे वाला है, एक गरीब है, एक अच्छे कुल वाला है, एक थोड़े जाति में भी नीच कुल का है माना जाता है, लेकिन कोई भी है, कैसा भी है, आज सरकार लोग कहते हैं छुआछूत खत्म करो, भेदभाव खत्म करो, और हमारे क्लास के अंदर अगर कोई ऐसे बाबा के बच्चे आते हैं, शहरों में तो इतना नहीं है, लेकिन गांवों में अभी तक भी वो भावनाएं भरी हुई हैं। जब हम सबका बाबा ने कुल चेंज कर दिया, कुल चेंज हुआ, हम सब मर्जीवा कुल के बन गए, ब्राह्मण कुल के में बन गए, आ गए, तो हम सब ब्राह्मण कुल की आत्माएं, जो बाबा के बच्चे पवित्र बने, शुद्ध शाकाहारी बने, जिन्होंने चार नियमों को यथार्थ पालन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, दिव्य गुणों पर ध्यान है, जिन पिल्लर्स को जिन्होंने मजबूत किया वो ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण आत्माओं के साथ हमारा आपसी संबंध बहुत समानता का हो, सम व्यवहार जिसको हम कहते हैं, उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ऐसा है, वो भावनाएं हम बच्चों के बीच में, हमारे इस परिवार के अंदर दैवी कुल की रस्म के अंदर नहीं है। और ये रिकॉर्ड अगर किसी ने अच्छा बना लिया, समान दृष्टि सबके प्रति, तो मैं समझता हूं अपनी और सबकी उन्नति के हम निमित्त बन सकते हैं। और एक बात बताता हूं, वो है समान स्थिति, जिसमें बाबा कहता है निंदा स्तुति, जय पराजय, मान हानि, दुख सुख, कई प्रकार की बातें हम सबके सामने आती हैं और कलयुग के अंतिम समय में ये हिसाब किताब हर एक के सामने आ रहे हैं और आएंगे। बाबा कहता है हर क्षेत्र में अति होगी और अति के बाद ही अंत आएगा, इसलिए हम सब इस अति के वातावरण में कोई कैसी भी बातें आती हैं अपनी स्थिति को नीचे ऊपर न करें, एक रस रख के संतुलन बना करके चले। संतुलन बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है, अगर बैलेंस से चलना आता है, अति हमेशा नुकसान करती है, हम सब जानते हैं। अति योग भी करोगे तो भी थोड़ा सा दिमाग पर असर आ जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसे बैठ जाओगे तो, और बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो भी कहेंगे क्या योगी लाइफ है इसकी, लाइफ है। हम सबको हर चीज का बहुत बैलेंस रख करके चलना है। परमार्थ और व्यवहार, ये दो चीजें आती हैं, एक व्यवहारिक जीवन है। कई लोग व्यवहार की तरफ चले जाते हैं तो बाबा भूल जाता है, सेवाएं भूल जाती हैं, यज्ञ भूल जाता है, क्या करूं मेरी जवाबदारियां हैं, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे परिवार है, उनको संभालना पड़ता है, व्यवहारिक तो व्यवहारिक बन जाते हैं। और कई फिर परमार्थ में लग जाते हैं तो व्यवहारी भूल जाते हैं। बाबा ने सिखाया है, बाबा के लिए अगर आपने समय दिया है, निकाला है, सेवाओं में दे रहे हो और लौकिक जवाबदारियां हैं तो उनको भी विधि पूर्वक संतुष्ट करते हुए निभाना आवश्यक है। परमार्थ और व्यवहार दोनों का बैलेंस रख करके चलो। न्यारा और प्यारा, न्यारे ऐसे नहीं बनो जो कहें तो पता नहीं क्या हो गया इसको, सन्यासी बन गया, किनारा कर लिया, और प्यारे इतने नहीं बन जाओ जो फैमिलियरी बन जाओ, एकदम एक दूसरे के नाम रूप में, एक दूसरे के प्रभाव में, झुकाव में फंस जाओ। तो देखना, हम सबको बाबा ने बैलेंस सिखाया है और बैलेंस रख करके चलने वाली आत्मा का रिकॉर्ड अपने आप अच्छा हो जाता है। कोई नहीं इस पर उंगली उठाता कि देखो ये ब्रह्मा कुमारियों में गया ना, ऐसा हो गया। घर गृहस्थ में रहने वाली आत्माएं हैं, कई प्रकार की जवाबदारियां हैं, निभा रहे हैं लेकिन निभाते हुए फंस नहीं रहे हैं, वो बैलेंस बाबा ने सिखाया है। तो बैलेंस से चलेंगे, लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, बड़ा आनंद का अनुभव करेंगे और सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी। हम सबको आवश्यकता है अपने पुरुषार्थ की उन्नति के लिए सबकी दुआएं, और वो दुआएं बैलेंस वाले को ही मिलती हैं। इसलिए अगर इन बातों पर हमारा ध्यान है और इन पर हम अच्छा अपना रिकॉर्ड बना के चलते, ये श्रेष्ठ रिकॉर्ड है, और ये श्रेष्ठ रिकॉर्ड जिनका है भगवान भी उनको नई दुनिया में एडमिशन देने के लिए तैयार है, कोई से पूछने की जरूरत नहीं है क्या पद मेरा होगा, उनको अच्छे से अच्छा पद मिल ही जाएगा। दो ही पद फिक्स किए बाबा ने और कोई का नाम डिक्लेयर नहीं किया अभी तक, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद संगम पर ही डिक्लेयर हो गया, ब्रह्मा और सरस्वती का, मम्मा और बाबा का, बाकी और कोई भी पद किसी के डिक्लेयर नहीं है। कहा बच्चे चेयर रेस चल रही है, रेस करो, और रेस में नंबर वन लेना है तो इन दो बातों पर ध्यान देना, एक अच्छा चार्ट बना लो और दूसरा अपना श्रेष्ठ रिकॉर्ड बना लो, रिकॉर्ड पर जरा भी कहीं धब्बा ना आए। ब्राह्मण जीवन में इस पर जिसने अंडरलाइन किया है उसकी सदा उन्नति होती है, सदा आगे बढ़ता है। तो हम सब इन बातों का ध्यान दें, और कल हमारे बाबा के अवतरण का दिन है, शिव जयंती महोत्सव है, हम सभी बाबा के जन्मदिन को बड़े उमंग उत्साह से मनाते हैं, लेकिन सब सवेरे से रात तक एक ध्यान देना, क्योंकि अभी बाबा का जो पार्ट चल रहा था, बाबा आते थे साकार में और अभी अव्यक्त वतन से बाबा अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं, और अव्यक्त स्थिति में रहने वाली आत्माएं बड़े अच्छे अनुभव करके जाती हैं। कोई भी ये नहीं कहता मैं बाबा से मिलके नहीं आया, जो भी यहां आ जाते हैं इस सभा के अंदर बैठते हैं, बड़े सुंदर बाबा के बहुत स्नेह भरे मिलन का अनुभव करते हैं। तो कल हम सब बाबा से जो अव्यक्त मिलन मनाएंगे, अमृत वेले से ही लक्ष्य रखना कि हमें अपनी अव्यक्त स्थिति के द्वारा शिव बाबा की जयंती, शिव बाबा की जयंती के साथ ब्रह्मा बाबा की जयंती, और ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम सब बच्चों की जयंती है, क्योंकि अलौकिक जन्म हम सबको बाबा ने दिया। उसके साथ बहुत सारी जयंतियां मिक्स हो गई हैं, गीता जयंती है, स्वर्ग की जयंती है, तो वो सब जयंतियों की सबको मुबारक है। लेकिन सभी ध्यान देना कि हम सब अमृत वेले से अव्यक्त वतन में बाप दादा से मिलन मनाएं, खुशियां एक दूसरे को बधाई दें, और बहुत अच्छी तरह से शाम के समय अव्यक्त बाप दादा की बधाइयों को अनुभव करें। ओम शांति।